آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ریڈیو کی اردو نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان زین نبی۔ افغان جنگ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نئی پالیسیز بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پاکستان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں یونیورسٹی آف سڈنی کے ساؤتھ ایشیا اسٹڈی گروپ کے ڈائریکٹر جناب حسین ندیم صاحب، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے جو حکمت عملی سامنے آئی ہے، جس کو پاکستان میں کافی ڈبیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں، تو کیا اسٹانس ہے جو امریکہ کا ہے اور کیا اسٹانس ہے پاکستان کا، اور اس کو حسین کیسے دیکھتے ہیں؟ حسین، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا، بتائیے کیا نظریہ ہے آپ کا؟
شکریہ زین مجھے بلانے کا۔ دو چار اس میں پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر سے اور وزیر خارجہ کی طرف سے اس کے اوپر کافی سخت رد عمل آیا ہے، مگر بات پوچھنے والی یہ کہ اس کے اس پالیسی کے اندر پاکستان کے لیے ایز سچ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ پالیسی جس کے اندر انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا ہے کہ آپ کے اندر پاکستان کے فاٹا ریجن اور کے پی کے اندر سینکچریز ہیں، وہ پہلے بھی اوباما پریزیڈنٹ اوباما کی بھی گورنمنٹ پاکستان کو بلیم کرتی تھی اسی بات کے اوپر۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ آپ کو ٹو ڈو مور والی بات، کہ آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا ان سینکچریز کو ختم کرنے کے لیے، ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی، پچھلے 8-10 سال سے یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو رد عمل اس کے اوپر آنا از اسٹرینج، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تیسری یہ چیز کہ پاکستان کا رد عمل زیادہ چیز کے اوپر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو ایک زیادہ انفلوئنس دیا ہے افغانستان کے اندر، اور ایک انڈیا کو کہا کہ آپ زیادہ رول پلے کریں، مگر یہ بھی کوئی ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما کی حکومت میں بھی اب کا یہ چیز ایک ڈائریکشن میں تھی کہ انڈیا کو وہ زیادہ لیوریج دے رہے تھے وہاں پہ۔ تو رد عمل میرے نزدیک تھوڑا آؤٹ آف پروپورشن ہے۔
حسین، میں آپ سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا انہی پوائنٹس کو لے کے جو آپ نے کہا ہے۔ بے شک ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور آج بھی ایک بیان آیا جس میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکی مراد پاکستان کو ملتی رہی ہیں، اگر پاکستان نے امریکہ کی مزید مدد نہ کی تو وہ مراد نہیں ملیں گی، جس پہ مزید پاکستان میں پھر سے ایک بحث ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی پہلے بارہا کہی جا چکی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہماری جانب سے دیے جانے والے پیسے یا کسی قسم کی جو امداد ہوتی ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریٹرنز بھی آئیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی خاص وجہ تھی جو اس قسم کا ریئیکشن آیا، یا صرف ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیونکہ پاکستان کو تردید کرنی ہی تھی اسی لیے صرف تردید ہوئی ہے؟
دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی پولیٹیکل ہے۔ جو امریکہ کی امداد آتی ہے پاکستان کو دو شکلوں میں آتی ہے، ایک سول ایڈ آتی ہے اور دوسری ملٹری ایڈ آتی ہے۔ ملٹری ایڈ جو پاکستان کو آتی ہے وہ تو پاکستان جو وار آن ٹیرر کے اندر جو ایکشن لے رہا ہے، جو اپنی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اوپر انہوں نے ایک لاکھ سولجر پاکستان کے بارڈر کے اوپر تعینات ہیں، ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے اس کی ری ایمبرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ امریکہ کا پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا وہ پیسہ ہے جو پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو پاکستان کی سویلی اسسٹنس آتی ہے اس کے اندر 30-40% جو آتا ہے وہ سیدھا پاکستان سے واپس چلا جاتا ہے کنسلٹنسی کی فارم میں، اوور ہیڈ کاسٹ کنسلٹنسی کی فارم میں۔ ایک ریسرچ اسٹڈی کے مطابق ٹوٹل پاکستان کے اندر امریکہ کی امداد جو پرسنٹیج فارم میں آتی ہے وہ 15-20% آتی ہے۔ پرابلم یہ کہ اس امداد کے اوپر بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس کو بلو اپ کیا جاتا ہے جیسے کہ بہت امداد آ رہی ہے، اور جو امداد آتی ہے وہ پاکستان کی بہتری سے زیادہ امریکہ کے سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے آتی ہے۔ یہ ایک فورن اسسٹنس کی ایک پالیٹکس ہے جو کہ عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ آج پاکستان کی اندر امریکہ کی امداد بند ہو جائے تو پاکستان کے جی ڈی پی اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر نیگلیجبل افیکٹ ہے اس کا۔ تو یہ ایک بات ہماری قوم کو اور پاکستانیوں کو سمجھنی بھی چاہیے کہ ایڈ جو ہے اٹس اے پولیٹیکل لیوریج، اور وہ آپ کی جب تک آپ کی وار چل رہی ہے تو تب تو رہے گا، جب آپ کا امریکہ کا سیکیورٹی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ایڈ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ ضروری چیز یہ پوچھنے والی ہے کہ پاکستان نے اب تک یہ 16 سال سے پچھلے ایک وار چلتی آ رہی ہے، یہ ہم اس جگہ کہاں پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان کی حکومت نے دی ہیں، پاکستان کی افواج نے دی ہیں، سب سے زیادہ سفر بھی پاکستانی عوام نے کیا ہے، مگر آج ہمیں بجائے اپریشیٹ کرنے کے، وہ بھی کرتے ہیں مگر اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اوپر الزام بھی لگتا ہے کہ آپ ٹیررزم سپورٹ کر رہے ہیں۔ तो ये हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुआ है, क्या हमारी हुकूमत की मिसहैंडलिंग है, क्या हम अपनी सियासत में इतना मसरूफ रहे हैं कि हमारे ऊपर से पानी गुजर गया और अब हमें रियलाइज हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी कोई अनहोनी बात
की। ये बात कहें, आपने खुद जिक्र किया 1 लाख फौजी हैं, वॉर ऑन टेरर में हैं, और हम ISPR के स्टेटमेंट्स पढ़ते ही रहते हैं कि कभी कोई ऑपरेशन चल रहा है, कभी कुछ ऑपरेशन की अपडेट्स आती हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि क्या वो इग्नोर हो रहे हैं जो एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है?
देखिए, इग्नोर तो इन रियल टर्म्स तो इग्नोर नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर रिजल्ट्स सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए। देखिए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम लोग जान ले तो कुछ बेहतर होगा। वॉर ऑन टेरर की गई थी अलकायदा के खिलाफ, वो तालिबान के खिलाफ जंग नहीं थी। अलकायदा का इस वक्त 80% से ज्यादा आपकी ऑपरेशन, उनके नेटवर्क तबाह हो चुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है जिसके अंदर पाकिस्तान का अंदर इसमें सबसे बड़ा हाथ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि 2003 के अंदर आपकी अफगानिस्तान से फोकस हटा के अमेरिका इराक के अंदर गया, और उसके बाद एक फोकस उनका उसके बाद सीरिया में रहा है, इराक में रहा, लिबिया चले गए। वहां पर जो उनके अपने फेलियर हैं, वो अगर वो उन फेलियर्स को अफगानिस्तान के अंदर आपका फोकस नहीं था, और वहां पे आपकी इराक में भी फेलियर हुआ, अफगानिस्तान में भी फेलियर हुआ आपका, तो उसका एक आपने मलबा किसी पे गिराना है। अब पॉलिटिकली अमेरिका के लिए ये अच्छी चीज नहीं है कि वो जाके कहे जी हमने $750 बिलियन लगाया अफगानिस्तान के ऊपर और हम हार रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसियां खराब है। तो आपको एक स्केपगोट भी चाहिए होता है, और वो आपको साल के साल जो $1-2 बिलियन एड में देते हैं तो उसके साथ ब्लेम भी देते हैं कि जी आप ये ब्लेम भी साथ एक्सेप्ट कर लें कि आपकी होती है।
तो पाकिस्तान का आपके नजरिए में क्या स्टैंड होना चाहिए, जब अगर इन पहलुओं की रोशनी में देखा जाए कि सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है या स्केप कोट बनाया जा रहा है? बहरहाल कुछ बातें ठीक और गलत जरूर होती हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में पाकिस्तान का नाम लेके उन्होंने बातें कही हैं, तो पाकिस्तान का एक रिस्पांस आना क्या चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तान का, मेरा जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से सबसे बड़ा इख्तलाफ है, और मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन जो होती है उनके अंदर मैं ये बात कहता भी हूँ कि देखिए, अमरीकन जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ब्लंट टॉक करती है, अमेरिकन कॉम भी ब्लंट टॉक में बिलीव करती है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट को ब्लंटली अपने तहफुजात, अपनी स्ट्रेटजी सामने रखनी चाहिए। अगर आप हकानी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो उनको बताएं कि हम सपोर्ट करते हैं और इन वजूहात के नजदीक हम सपोर्ट करते हैं, मगर चुप रहना और फेस के ऊपर जाके हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर रिपीटेडली बार बार जाके अमेरिका में कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं तालिबान कौन है, हम तो हकानी नेटवर्क को जानते भी नहीं है कौन है, और पीछे पीछे ये कहना कि जी हम सपोर्ट करते हैं उनको, ये दोगला पुना अमेरिका को समझ आता है। देखिए, तकलीफ अमेरिका को इस बात की नहीं है कि आप सपोर्ट करते हैं, उनको तकलीफ इस बात की है कि आप उनको गोल गोल लेके घूम रहे हैं। हमारी ब्लंट फॉरेन पॉलिसी होना सबसे जरूरी है। दूसरी चीज ये कि एड जो है, आपने बहुत अरसे से उसके ऊपर एक शोर मचा है, एड का एक आम पाकिस्तानी आदमी को कोई फायदा नहीं है। अगर एड किसी को फायदा देती है तो वो आपकी इलीट एस्टैब्लिशमेंट को देती है, फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट को देती है। आज पाकिस्तान अगर एड बंद कर दे तो अमेरिका का आपके ऊपर लेवरेज खत्म हो जाता है। मैं इस हक में नहीं हूं कि आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें, मगर ये मेरे नजदीक पाकिस्तान को इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ बड़ी सीरियस और बड़ी ब्लंट टॉक करनी चाहिए कि जी हमें आप बाजर दें और हमारी एड बेशक आप रोक दें, मगर हम ये ब्लेम नहीं लेंगे। अगर आप करना,
पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है, ये सलाहियत रखती है, ऐसे प्रोफेशनल या उस पावर को फील करते हैं कि वो ब्लंट टॉक कर सकें?
देखिए, अगर काबिलियत नहीं रखती तो फिर इनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। अगर वो हुकूमत में है और कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर इनके मफादात जो है ये कि इनके बच्चे और इनकी फैमिली अमरीका में है, किसी की सऊदी अरब में, और उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर तो हम डिबेट ही गलत चीज पे कर रहे हैं। मगर ओरिजिनल फॉरेन पॉलिसी इनकी साफ ब्लंट टॉक होनी चाहिए अमेरिका के साथ, और अमेरिका के एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं पिछले 6 महीने आखिरी साल के अंदर 2016 के अंदर अमेरिका में था, और मेरी वहां पे सेनेट में भी मीटिंग्स हुई, स्टेट डिपार्टमेंट में भी हुई, पेंटागन में भी हुई, और एक उनका मैसेज मैं वहां से पाकिस्तान वापस लेके गया था, और वो ये लेके गया था कि आप हमसे बात सीधी करें। अगर आप गोल गोल घुमा घुमा के उनको बातें करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे जब आपसे पूछेंगे कि जी आप तालिबान को सपोर्ट करते हो, और मुस्कुरा के जवाब देंगे हाँ या ना में नहीं आप जाएंगे, तो मेरे नजदीक उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन है। अमेरिकन इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, वो वॉर में हार रही है जिसकी कुछ वजूहात आप है, मगर वजूहात आप ज्यादा बड़ी नहीं है उसके अंदर। मगर आप बात सीधी नहीं कर रहे तो आपके ऊपर शक सबसे पहले जाता है कि आप शायद वहां पे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और इसका भी और वजूहत है बहुत ज्यादा कि हम हमारी क्यों ये पॉलिसी रही है, हमारे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्यों इतनी ज्यादा एक बाइफरकेशन है।
हुसैन, फॉरेन पॉलिसी का तस्करा कर रहे हैं तो इस पूरे जो इवेंट हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लेके पाकिस्तान के बयान तक बहुत सारे कंट्रीज़ की मज़ीद फॉरेन पॉलिसी हमारे सामने आ गई है। भारत के बारे में हमने तस्करा किया, इसमें कोई कोई छुपा हुई बात नहीं है कि भारत जो है अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में काफ़ी रकम पहले ही खर्च कर चुका है, इन्वेस्ट अभी भी कर रहा है। तो भारत का नाम लेने के बाद से पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ बयान आता है। जब पाकिस्तान पर तनकीद हुई तो चीन की जानिब से एक बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने शायद दिफा किया है पाकिस्तान का। भारत के मीडिया ने यूँ देखा कि पाकिस्तान को बुरा इसलिए लगा क्योंकि भारत की तारीफ हुई। और अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म जो हैं मैलकम टर्नबुल, उनका भी स्टेटमेंट आया जिसमें ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी कम होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अपने फ़ौजी वहाँ भेजेगा या नहीं, इस बात का तयन बाद में किया जाएगा, लेकिन उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। तो इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं आप?
ग्लोबल पॉलिटिक्स तो एक पोजीशन में आ चुकी हुई है कुछ अर्सा से, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर से एक फ्लक्स में थी, मगर आई थिंक अब अलायंसेस काफी हद तक शिफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मेन एक्टर्स जो हैं वो आपके रशिया और ईरान भी हैं। हकानी नेटवर्क क्या तो तालिबान क्या, उनको पाकिस्तान तो शायद अब इतना सपोर्ट नहीं करता ना, वो पाकिस्तानी कंट्रोल में है जितना आपकी ईरान और रशिया की इन्वॉल्वमेंट है उस रीजन के अंदर। चाइना ऑल्सो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, और उसका रीजन ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हुकूमतों को ये नजर, एक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ड्रॉप हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोनों हुकूमतें ने इधर उधर देखना शुरू किया, जिसके अंदर रशिया की इन्वॉल्वमेंट आई, चाइना की इन्वॉल्वमेंट आई। तो एक ब्लॉक तो आपका एक इस्टेब्लिश हो गया हुआ है अगेंस्ट अमेरिका इस रीजन के अंदर, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका को इस रीजन के अंदर लंबे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और अगर रहना भी चाहिए तो स्टेबिलिटी के तौर पर सीरियसनेस से अगर रहेंगे तो ठीक है। एक चीज डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी की है कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री कैंपेन है उसको डीपोलिटिसाइज किया। ये बहुत अरसे से खासतौर पर प्रेजिडेंट ओबामा की हुकूमत में होना ये शुरू हुआ था कि आपकी वॉर ऑन टेरर और अफगानिस्तान के अंदर कैंपेन पॉलिटिकली माइक्रो मैनेज हो रही थी वाशिंगटन डीसी से, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनकी पॉलिटिकल टाइमलाइन। आप जब एक जंग में जाते हैं तो आप टाइमलाइन नहीं देते कि हमने 2011 या 10 में बाहर निकल जाना है। प्रेसिडेंट ओबामा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो जंग में एंटर हुए टाइमलाइन देके, जिसका फायदा सबसे ज्यादा तालिबान को हुआ और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ड्रॉप हुई वहां पे रीजन में। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो कमांडर्स को ऑन ग्राउंड ज्यादा एम्पावर की है और कहा कि आप वहां पे अपनी पॉलिसीज डे टू डे की रन करें जो पहले वाशिंगटन से हुई थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को होगा। वजह यह कि जब मिलिट्री कमांड करेगी अमेरिका की अफगानिस्तान में तो उनकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान आर्मी के साथ ज्यादा होगी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हमेशा ये रही है कि अमेरिका की पूरी पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन फौज को बड़ा काबिल समझती है और बहुत अच्छी नजरों से देखती है, मगर हमेशा उनकी प्रॉब्लम ये रही है कि वो समझते हैं कि वाशिंगटन की पॉलिटिक्स अमेरिकन मिलिट्री को डिलीवर नहीं करने देती रिजल्ट। तो मेरे नजदीक प्रेसिडेंट ट्रंप अब जब पावर अमेरिका के हाथ में देंगे, अमेरिकन फौज के हाथ में अफगानिस्तान में, उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान आर्मी का इंटरेस्ट होगा कि वो सीरियसली कोऑपरेट करें उनके साथ। जहां तक ब्लॉक्स की बात है, चाइना रशिया और अमेरिका का एक आपस में इनका एक पोलराइजेशन हो चुकी हुई है, और इंडिया जो है इसके अंदर एक स्मार्ट पावर है। मैं इस बात से किसी हद तक यकीन नहीं करता कि अमेरिका की पॉलिसी, तो 70 साल से आप देख लें कि उन्होंने पूरा अपनी पॉलिसी पाकिस्तान की तरह अमेरिका के हाथ में दे देनी है। वो अपनी टर्म्स के अंदर अफगानिस्तान में जाएंगे, अपनी टर्म्स के अंदर अफगानिस्तान में ऑपरेट करेंगे, और अगर उन्हें अमेरिका से प्रेशर आता है तो उधर से ही वो माजरत कर लेंगे, वो चुप रहने वाले नहीं, वो ब्लंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चलेंगे।
हुसैन, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है?
देखिए, पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड साफ सी चीज है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की। अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिसीज पोलराइज्ड है, पॉलिटिकल है, इदारों की सरकशी हो रही है, इदारों के खिलाफ मूवमेंट्स निकाली जा रही है चाहे वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की स्टैंडिंग नहीं रहती। आप तब तक ही फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिटिक्स कर सकते हैं जब आपके अंदर मुफाहमत हो, जब आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो। वजारत खारजा इस वक्त आपकी ऊपर से नीचे तक उसके अंदर पॉलिसी बनाने की कैपेसिटी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आपकी सीरियस लैप्सेस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। دو بڑے آپ کے ادارے, اور منسٹری آف ڈیفنس کیونکہ ملٹری رن کرتی ہے تو اس کی تھوڑی کیپیسٹی ہے, مگر دو بڑے آپ کے ادارے جو فورن پالیسی ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی کیپیسٹی 30% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. جب تک آپ اپنے ریفارمز انٹرنل نہیں کریں گے, قابل لوگ آگے نہیں لے کے آئیں گے, اگر آپ سیاسی لوگ آگے لے کے آتے رہیں گے تو آپ کی پھر فورن پالیسی بھی اسی طرح کی ہوگی جس طرح سے آپ کی پاکستان باقی کوئی پالیسیز ہیں. ایکسپرٹیز ہے ہمارے پاس, مگر ان ایکسپرٹیز کو آگے نہ لانے دیا جاتا ہے نہ لے کے آیا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ڈسٹربڈ ہے اور آپ کی فورن پالیٹکس بھی ڈسٹربڈ ہے.